نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Don't be sad غم نہ کرو یا پھر لا تحزن ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہے اور آج ہم اس کے ڈے 13 کا آغاز کریں گے آج کی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 35 ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا سامان نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ بے خوف اور بے غم زندگی اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرے پھر اپنی اصلاح کر لے ایمان لانے کے بعد یہ آیات ہمیں سورۃ الاعراف میں لباس اور حجاب اور اسی سے متعلق کچھ چیزوں کے بعد ملتی ہیں کہ مکہ والوں نے اپنے باپ دادا کے نام پر کچھ چیزیں روایتاً اپنے اوپر اس طریقے سے طاری کر لی تھی کہ اس کے اوپر ان کے دین کا شبہ ہونے لگتا تھا یعنی اپنے آپ کو کچھ ایسے حال حلیوں میں رکھ کر عبادت کرتے تھے کہ جو معیوب تھے لیکن جب ان سے کوئی پوچھا جاتا کہتے تو ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا تو حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے غم زندگی میں جو آتے ہیں وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو جو چیزیں کرتے دیکھتے ہیں وقت بدل گیا حالات بدل گئے اس کے تقاضے بھی بدل جائیں گے لیکن لوگ روایات کے مقلد بن کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے کبھی کبھی یہ رسم و رواج ہوتے ہیں بہت بوجھل پڑتی ہیں ایسی رسمیں لیکن کیا کریں کرنا پڑے گا سب کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں تو آج کی ٹپ لیجئے کہ آرام سے سکون سے جو بھی چیز نبھائی جا سکے اس کو نبھائیے اور اپنے اوپر بیجا رسومات اور رواجوں کا بوجھ نہ ڈالیے اور اپنی زندگی کو غم سے پاک کیجئے زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں غم کرنے کا وقت ہی نہیں پھر کہاں غم منانے کا وقت ہو اور کہاں خوشی کے نام پہ رب کو ناراض کرنے والی رسم و رواج ہوں تو آج نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم تقوی کی زندگی بسر کریں گے ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف معاشرے کے رسم و رواج اور خاندانی تقاضے ہیں ہر وہ چیز ہم دل کی خوشی سے مانیں گے جو تو نے یا تیرے رسول نے دی اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے چاہے خوشیوں کے نام پہ چاہے کسی خاص موقع کے نام پہ اپنے اوپر بوجھ لا دیں تو ہم اس سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ خواہش اور دعا قبول فرمائے اس سے پچھلی نشست میں ہم نے جو موضوعات کیے تھے اس موضوع سے متعلق اس کو بھی دہرا لیتے ہیں کیونکہ پچھلی چیز کو سمجھ لیں تو اگلی جاننی اور بھی آسان ہو جاتی ہے تو ایک عضو کھو جانے کا کیا غم دوسرے آزاد و سلامت ہیں اور اس کا جو فیڈ بیک آیا اس کو سن کر واقعی سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے زندگی میں بہت ساری نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے دیتے ہیں مختلف حالات کے تابع کر کے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ کھونے لگتی ہیں تو جب بھی کبھی زندگی میں کسی کی ایک آنکھ جانے لگے تو فوراً دعا کر لے کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھ اور دوسری کو بھی سلامت رکھ آپ کا میرا کام اتنا ہی ہے مالک کی دی ہوئی چیزوں کی نعمتوں کی قدر کیجئے ان کا صحیح استعمال کیجئے اور خاص طور پہ اپنے اعضاء کو اس سوچ کے ساتھ استعمال کیجئے آج ہیں کل نہ رہے تو کیا ہوگا اور خاص طور پہ اگر آنکھوں جیسی نعمت جو ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ناطے سے دیکھی اور پڑھی تھی تو کیا پتہ چلا کہ ان آنکھوں سے وہی دیکھنا اور دکھانا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جس کا حکم دیا آپ کو مجھے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت ضرور سمجھنا ہے اور اچھے طریقے سے لینا ہے پھر دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا تھی گردش ایام یاد رکھیے زمانے کی گردش ہے جس کو آپ نے میں نے نبھانا ہے اور آپ کے میری زندگی میں اگر کبھی خوشیاں آ جائیں تو اس میں اتنا نہ کھو جائیے کہ آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو کھو دیں और ना गम आए तो इतने ज़्यादा डाउन चले जाएं कि हम अपने आप के ऊपर फिक्र करें। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि ढलती छाँव है ज़िंदगी, लाइफ इज़ अ फेडिंग शेडो। जितना ज़्यादा इस ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार लेंगे, कल वही काम आएगा। फिर अगला टॉपिक था ज़मीन और भी और आसमान और भी हैं, यानी जब बहुत ही ज़्यादा इस ज़िंदगी में खोने को दिल करे तो फिर क्या होगा। जब भी कभी ज़िंदगी में आपकी मेरी कोई ऐसी कैफियत आ जाए जिसको लोग कहते हैं ना, आपको क्या पता, जिस पे आती है वो जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ना करे किसी पर ऐसी को पड़े, और पड़ जाए तो याद रखिए उसका अजर भी बहुत बड़ा होगा। फिर इसी तरह ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हुस्न व मलाल ना करें, जो होगा देखी जाएगी। एक सवाल कीजिए खुद से, जब मेरे मरने की खबर आएगी तो अमूमन लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे। वट एम आई लीविंग बिहाइंड, मेरा हेरिटेज क्या है, यानी मेरे बाद लोग किस चीज़ पे होंगे। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करते रहे ना, तो बहुत सारे हमारे गम और मसले और परेशानियाँ दूर हो जाएं। लेकिन बात यह है कि हमें ये दुनिया तंग बहुत करती है, और ख़ास तौर पे फिर हम इससे तंग भी बहुत होते हैं। फिर इसके बाद अगली टिप थी मौत का एक और किस्सा। हकीकत है कि मौत अपनी जगह एक बहुत बड़ा उस्ताद है। कफा बिल मौती वाइज़ा, एक हदीस के अल्फाज में आता है कि मौत काफ़ी है वाज़ करने को, यानी आपके मेरे वाज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मौत जैसा एक ऐसा वाइज़ आपके मेरे ऊपर मुकर्रर किया हुआ है कि उसको सोच लीजिए तो बात ख़त्म। बड़े से बड़ी मुसीबत आ गई, नहीं मान रहे बच्चे, नहीं सुनते बच्चे, नहीं अच्छे होते बच्चे, सर को आगे, ज़ुबान को आगे, आंखों को आगे, क्या करूं? चलो छोड़ो, जो भी होगा दुनिया का मामला है, नहीं तो ना सही। यानी ज़िंदगी का वो गम और वो दुख जो संभाले ना संभले, जो रोके ना रुके, उसको ये कहकर पीछे कर दें, 4 दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप इस हकीकत को मानते जाएंगे ना, उतना अल्लाह की रहमत आपके शामिल हाल होगी। फिर उसके बाद हालात से ना घबराइए, क्योंकि इंजाम से आप आगाह नहीं हैं। बस दफ़ा बुरे हालात एक अच्छे इंजाम की तरफ ले जाते हैं। ज़िंदगी में इसके हमारे पास बहुत सारे सबक हैं। बच्चे की तख्लीक देखिए, माँ के लिए वो दिन कितने मुश्किल होते हैं, किस उम्मीद पे गुजारती है कि आखिर हर दिन गुजरता जाएगा और वो वक्त करीब आता जाएगा जब मेरा बच्चा मेरी गोद में होगा। बस अगर इंजाम अच्छा हो गया तो इर्द गिर्द की चीज़ों से फिक्र ना कीजिए। फिर इसी तरह अगला टॉपिक था कि दुनिया इससे बहुत हकीर है कि इस पर गम किया जाए, यानी किसी का 1 रुपए का कोई खिलौना गुम जाए और आप उसको रोता धोता पाँव पटकता देखें, आप कहते हैं रो किस बात पे रहे हो, 1 डॉलर था ये पकड़ो, मैं तुम्हें 2 डॉलर की चीज़ ला देती हूँ। माँ के लिए तो ये आसान है ना, तो बच्चे को चैन आ जाएगा। इसी तरह याद रखिए, हमारे बच्चे जैसे 1-2 डॉलर के खोने पर रोते हैं ना, या 1 पेंसिल के टूटने पर रोते हैं ना, हम भी ज़िंदगी में कोई बस हम 1-2 की नहीं तो 100 डॉलर की चीज़ के खोने पर रोते हैं, और बड़े होते हैं तो 1,000 डॉलर की चीज़ पर रोते हैं, और बड़े होते हैं तो 10,000 पर रोते हैं। यानी जितने बड़े होते जाते हैं ना, वैसे शर्म की बात है, होनी तो बेहतरी चाहिए थी, हम उतने ही बिगड़ते जाते हैं कि बड़े बड़े और हज़ारों और लाखों के गम पाल लेते हैं। तो बेहतर है कि इस ज़िंदगी को और इस दुनिया को इसके औकात पर रखा जाए। फिर इसी तरह ईमान बिल्लाह के साथ हुज़्न की क्या गुंजाइश, शुक्र कीजिए ईमान मिल गया, और क्या चाहिए आपको। अल्लाह ने आपको इतना प्यारा ईमान दिया, इसके बाद तो अब कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और इसी तरह से किसी आफत का लाहक हो जाना आपको तफव्वुक से ना रोक दे। आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आपको आगे जाना है, आपने दुनिया में तरक्की करनी है, क्या हुआ, आते रहे रास्ते में गम, आती रहे परेशानियाँ, आती रहे मुसीबतें, जो होगा देखा जाएगा। इस्लाम को पहचान लिया तो गम की कोई बात नहीं। बस दुआ ये कीजिए कि मालिक तू मुझे इस्लाम के साथ रखना, ईमान के साथ रखना। अल्लाह ने एक मुसलमान को खुश होने के लिए कितने प्यारे नुक्ते दिए हैं, लेकिन इंसान ऐसे गम पालता है जैसे बकरी या बिल्ली पाली जाए। खुशी खुशी पालता है और गम पालता है और गम पालता है, और बास लोगों को तो इतना मज़ा आता है, हर एक को बताएंगे, हर एक से कहेंगे देखा मैं कितनी दुखी हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? फिर अभी एक को बताया ना, फिर दूसरा, फिर फोन पे। और बस लोगों का तो हाल क्या है कि जब तक खुद दूसरों को अपने गम ना बता ले, उनको चैन नहीं आता। और अगर कोई दुखी कैफियत में आपका हालचाल ना पूछे तो बल्कि उल्टा नाराज हो जाते हैं। आपने हमें पूछा ही नहीं, आपको हमारी परवाह नहीं। मैं कहती हूँ पहले तो अल्लाह कोई गम ना दे, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना दे कि जिसमें आप कमज़ोर पड़ें, जिसमें आप रोएं, जिसमें आप धोएं, जिसमें फितरी तौर पे आपके चेहरे पे गम के मामले आएँ। लेकिन अगर आए ना, तो अल्लाह करे कोई भी हमारा ऐसा ना हो कि जो आके हमें और दुखी करे। लोगों को अल्लाह हमारे हंसते चेहरे दिखाए, खुश खुश चेहरे दिखाए। जो मांगेंगे ना वही होगा। तो फिर क्या सीख लिया? इस्लाम है तो और कोई गम नहीं, ज़रूरत भी कोई नहीं। ऐसे ही मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं? आज हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक से शुरू करेंगे, और वो क्या है? खुशबख्ती के असबाब और अनासिर। मैं आपसे पूछती हूँ, आप ख़ुद से पूछिए, क्या आप खुशबख्त हैं? क्या आप ब्लेस्ड हैं? लोग कहते हैं लकी, मुझे लकी लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। लक, इस्लाम को इसको बहुत पसंदीदा लफ्ज़ नहीं बोलता, क्योंकि इसी से फिर तुक्केबाजी और पानसाबाजी कह लीजिए, या सट्टेबाजी और जुआ तक चल पड़ता है कि भाई लक लक लुक कुछ नहीं होती। असल ये है कि आप ख़ुद से पूछिए, मैं ब्लेसिड हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। और फिर साथ ये भी देख लीजिए कि अमूमन हमारे यहाँ ब्लेसिड होने का क्या मेयार है? घर, बंगला, कोठी, शौहर का प्यार, नए नए कपड़े? नहीं, खुशबख्ती की सबसे बड़ी चीज़ तो यही है जो हमने पीछे देख ली। और वो क्या है? अल्लाह ने आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इस्लाम की समझ दी। और जितने साथी भी सुनते हैं, मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ कि आप अच्छे मुस्लिम्स हैं। आपको इल्म हासिल करने का शौक़ है, आपको इस्लामिक लेक्चर सुनने का शौक़ है, आपको कुरान सुनने का शौक़ है, तो आप अच्छे हैं। कोई आगे कोई पीछे, किसी में ज़रा ज़्यादा नेकी, किसी में कम नेकी, इसका ये तो नहीं मतलब कि सारे आलिम ही बन जाएं और सारे हाफिज़े कुरान ही होंगे तो जन्नत में जाएंगे। असल बात यह है कि इस्लाम की दौलत मिल गई तो बस आप खुशबख्त हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम इस पे खुश हों। आइए ज़रा जमा करते हैं इन अनासिर को। पहली चीज़ है शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान और सब्र करने वाला जिस्म खुश नसीबी के अनासिर हैं। यानी हमने तीन चीज़ें देखी। कैसे? अरब शायर कहता है कि शुक्र, जिक्र और सब्र यही नेमतों का सबब हैं, इनमें सवाब मिलेगा। अगर खुश नसीबी के बारे में उलमा का इल्म, हकीमों की हिकमत और शोरा के कसीदे जमा कर दिए जाएं, तब भी खुश नसीबी इसी वक्त हासिल होगी जब इन चीज़ों को पुख्ता इरादे के साथ महसूस और इख्तियार करें, इन्हें हासिल करें, इनकी तलाश करें और इनके खिलाफ अवामिल के अजाले की कोशिश करें। अल्लाह सुबहान तआला का इरशाद है, जो मेरे पास चलकर आएगा मैं इसके पास दौड़ कर आऊँगा। किस चीज़ की दलील है? मोहब्बत की, केयर की। इसी तरह ये भी होना चाहिए कि बंदा अपने राजों को छुपाए और अपने मामलात को दुरुस्त रखे। बयान किया जाता है कि एक आराबी से 10 दिनार के बदले एक राज छुपाने का मामला किया गया। मुराद ये था कि इस राज को छुपा लो तो तुम्हें 10 दिनार दूंगा। और याद रखिए कि दिनार सोने का सिक्का होता था। लेकिन वो राज इसे हजम नहीं हुआ, चुनाचे दीनार वाले के पास गया और उसके दीनार वापस कर दिए कि ये राज अफशा कर देगा। वजह यह है कि राज छुपाने के लिए सुबात, सब्र और अजीमत की ज़रूरत होती है। खुद से पूछिए, आपको क्या इजी लगता है, राज छुपाना या राज खोलना? और एक बाप ने भी तो बेटे को नसीहत की थी ना, बाप भी नबी, बेटा भी बाद में नबी बना। और वो क्या था? अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना। लोगों से अपने राज की बात कह देना, अपने भेद इन्हें दे देना, ये कमज़ोरी की अलामत है। ये इंसानों का एक पुराना और गहरा मरज़ है। आप देखिए कि अक्सर लोग जब दुख सुख करते हैं ना, और दोस्तों या अपने प्यारों के बीच में होते हैं, यही जुर्म कर रहे होते हैं। मैं तो यही कह सकती हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन, माजरत के साथ खुद से भी। क्या हम अपने दुख गम दूसरों को बताकर बाद में ये तो नहीं कहते, अब आप किसी को ना कहिएगा? कितनी अजीब बात है, जो सब्र आप ना कर सकी वो अपनी दोस्त से मांगती हैं, तो अपने राज नहीं बताने चाहिए। कौन इस बात का फख्र से और शुक्र से यकीन रखता है कि मेरे पास कोई 4 घंटे क्या 4 दिन भी बैठा रहे, मैं उसको अपना राज नहीं बताऊंगी, अपना दुख सुख नहीं करूंगी उससे। यहाँ राज जो है ना, वो दूसरे राज नहीं है, ये दुखों वाले राज हैं। तो लोगों से अपने राज की बात कहना, अपने भेद देना, गोया कि अपने आप को उनके हाथ में देना है कि मैं कमज़ोर हूँ, अब तुम मुझे इन्हीं के रास्ते से जो भी समझ लो। ये इंसानों का एक पुराना और गहरा मर्ज़ है। नफ्स से राज पर सब्र नहीं होता, वो दूसरों से ख़बरें नकल करता और भेद बताया करता है। खुशबख्ती के मौजू से इसका ताल्लुक़ ये है कि जब अपने राज अफशा करता है वो ज़्यादातर नदामत उठाता और अनजो गम करता है। राजदारी के सिलसिले में जाहिज़ एक राइटर हैं अरब, उन्होंने अपने अदबी रिसाइल में नहायत मौसर गुफ्तगू की है जो पढ़ने के लायक है। कुरान पाक में किस्से सूरत कहफ यानी असहाबे कहफ के किस्से में आता है, चाहिए कि लुत्फ से काम ले और कोई तुम्हें महसूस न कर सके। मुराद है कि लोगों को मत बताना कि हम वही हैं जो इतने साल पहले गार में गए थे। अक्सर हमें ख़ारिश हो रही होती है ना लोगों को अपनी बातें बताएं, नेकियों की, ये करती हूँ वो करती हूँ बहुत कुछ है बस क्या बताऊँ, वैसे हूँ मैं बड़ी आजिज़। तो वो क्या कह रहे थे कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि तुम इतने बड़े मरहले से खैर और आफियत के साथ गुजर के आए हो। और आप देखेंगे कि ये वो वक्त होता है कि जिसको अगर बंदा सहार जाए, बाद में अल्लाह ताला बड़ी बरकतें देते हैं, बड़ी खैर का फल लगता है उस दरख्त पे जो थोड़ा सा अपने आप को अंदर छुपा के रख ले। राजदारी की असल यही है कि लतीफ़ हीले से काम लिया जाए। मुराद है कि अगर कोई पूछ भी ले ना तो प्यार से स्माइल दे दें, अच्छा आप सुनाइए, बस कोई हीला कर दें। अरबी कहता है, मैं ऐसा राज छुपा रहा हूँ जिसमें गर्दन मारी जा सकती है। जी, क्या क्या चीज़ें हैं खुशबख्ती की? पहली चीज़ है आमाले सवाले। वलस्रिन्न लिंसान लफ़ी खुसरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती वतवासो बिलहक्की वतवासो बिस्सब्र। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाकर अमल सवाले करें और हक बात की नसीहत भी करें फिर उस पर सब्र भी करें। पहली चीज़ तो यही है। दूसरी चीज़ नेक बीवी, अज़वाजुन तैयबा, नेक जौज, आंखों की ठंडक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि दुनिया मुकम्मल तौर पर मता है और बेहतरीन मताए दुनिया नेक बीवी है। मिशकातुल मसाबीह की रिवायत है 3083। तो अगर आप नेक हैं तो यकीनन आप अपने शौहर के लिए बहुत कीमती हैं, और अगर आपकी बीवी नेक है तो आपकी वो बहुत बड़ी मता है, उसकी हिफाजत करें। फिर तीसरी चीज़ है कुशादा घर, खुला घर। सात बिन अबी वक्का से मरवी, चार चीज़ें खुशबख्ती से हैं, नेक बीवी, कुशादा घर, नेक पड़ोसी और अच्छी सवारी। और चार चीज़ें बदबख्ती से हैं, बुरा पड़ोसी, बुरी बीवी, बुरी सवारी और तंग मकान। थोड़ी सी बात करें कुशादा घर पे। आज हम में से बहुत सारे अपने ही साथियों को घरों के गम लगे हुए हैं। घर छोटा, अपना घर, किराए का घर, लिखिए ज़रा। क्या आज हमारे गमों की या हुज़्न की एक बहुत बड़ी वजह घर नहीं है? और ख़ास तौर पे जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं और वो घर हमारी पहुंच से भी ऊपर हैं, और अपने ही साथियों को ये कहते सुते सुना कि यहाँ तो कोई कैश पे और नकद पे ले नहीं सकता, और जब भी कभी नकद नहीं उधार पे लेंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट ही है। आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करती हूँ। एक बहुत ही मारूफ गाड़ी है आजकल टल्सा नाम की, आपको नहीं पता तो मुझे यकीन है कि आपके बच्चों को पता होगा। करोड़ में कीमत है उसकी, यानी लाखों से ऊपर चली गई, और यंग लड़के उसी के लिए पर तोलते हैं कि कभी वो गाड़ी मिल जाए। जो शख्स जो इस कंपनी को ओन करता है उसका नाम है एलोन मस्क। दुनिया का 31वां 31 नंबर का सबसे अमीर शख्स, यानी बिलियनेरियंस में जो नाम आते हैं तो इससे ऊपर कुछ नाम है। इसने अपना घर जिसकी वर्थ 29 मिलियन डॉलर्स थी बेच दिया। और ख़बर क्या है इसकी तरफ से, ये मेरे सामने रिपोर्ट ही है, मैं वही पढ़ रही हूँ। यानी लास्ट मंथ मस्क टोल्ड हिज 36 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स दैट ही वुड ओन नो हाउस। इसने अपने 36 मिलियन से जायद फॉलोअर्स को ट्विटर पे बताया कि वो अपनी हर फिजिकल पोजेशन बेच रहा है। क्यों? और जो घर बेच रहा है वो 29 मिलियन का है। क्यों? उसको नहीं शौक। और अगर पाउंड्स में लेना चाहें तो 23.5 मिलियन पाउंड्स का इसका घर। कैलिफोर्निया में इसका घर एक ऐसी जगह पे था कि जिसके बारे में लोग ख्वाब देख सकते हैं, और ये रिपोर्ट जो मेरे सामने है उसमें यही लिखा हुआ है, टेस्ला चीफ एग्जीक्यूटिव सोल्ड द हाउस। which is in the Bel Air area of Los Angeles, LA. To a company, एक ऐसी कंपनी को उसने बेचा है जो चाइनीज बिलियनेरियन है विलियम, और वो शायद वो भी कोई इससे भी बड़ी मछली होगी. किस्सा मुख्तलिफ, लोगों ने इसे पूछा क्यों. असल मेरा आपका मौजू ये है कि जिनकी गमों और तकलीफ़ों और एक्स्ट्रा वर्क और दुखी रहने की वजह उनके घर हैं, या घर की पेमेंट्स हैं, या घर घर न हुआ तो क्या होगा, वो होगा. इसने कहा कि 36.1 मिलियन ट्विटर्स मेरे ये बात जान लें कि मैं अपने सारे फिजिकल पोजेशंस बेच रहा हूँ, यानी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रखूँगा. लोगों ने पूछा क्यों. अब ये जुमला सुन लीजिए, आप मेरे से अच्छी इंग्लिश जानते हैं और आप उसको अच्छा ट्रांसलेट भी कर लेंगे. यानी बड़ा महंगा घर बेचकर एक छोटा सा अपने रहने के लिए ऐसा रख रहे क्यों. पूछा कि ऐसा तुम क्यों करते हो. उसने कहा कि जो बड़े घर या भारी या कीमती घर होते हैं ना, ये बंदे को बोझल कर देते हैं और इंसान तरक्की नहीं कर सकता. और 2013 में इसने ये घर ख़रीदा था और कहता है कि बिल्कुल मेरे घर के करीब था, यानी ऐसी जगह पे था जहाँ मैं काम करता हूँ, और ये सोच के लिया था कि सारे को डिमोलिश करूँगा टू मेक वे फॉर अ लार्जर मॉडर्न मेंशन. जी, लिया की सोच सोच से था. आज उसने थोड़े दिन उसको रख कर ये सोच लिया कि ये घर उसको उसके मकसद से दूर कर देगा, वो तरक्की नहीं करेगा. और ना समझ आए तो ये बात तो समझ आती ही है ना कि जितने बड़े घर उतने बड़े मसले. देखिए, यहाँ बात हो रही कुशादा घर की, महंगे घर की बात नहीं हो रही, फैंसी घर की बात नहीं हो रही, पाउश घर की बात नहीं हो रही. साफ़ सुथरा, सिंपल, खुला घर बेहतर है तंग, खुटे हुए और गंदे घर से. सबसे ऊपर सफाई को लगाइए, फिर इलाका, फिर साफ़ सड़कें, घर भी खुला, एरी है, फ्लरिश करता है बंदा उसमें, ये तो अच्छा है. इसके अलावा बाकी आप फनूस लगा लें, कुमकुमे लगा लें, शेंगलिर लगा लें, इटालियन किचन लगा लें, स्पेनिश वो लगा लें, दिल खुश नहीं तो घर कोई नहीं बल्कि बोझ ही है. और मुझे वो जुमले याद आते हैं जो अक्सर लोगों से गाहे बगाहे मिलते हैं, ये घर मुझे खा गया. कोई कहता है सारी महीने की कमाई इस घर में चली जाती है. कोई कहता है 20 साल से इस घर को दे रहा हूँ, आज तक ये मेरे नाम नहीं हो रहा. तो सोचिएगा इस बात को, क्या ज़रूरत है. नहीं है तो ना सही. अल्लाह के नबी का घर था अपना, कोई बहुत बड़ा विला था, कैसल था, महल था, शातो था. छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला हमें इन गमों से भी आज़ाद कर दे. फिर चौथी चीज़ देखिए, नेक कमाई. हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है और हराम कमाने वाला अल्लाह का दुश्मन होगा. फिर हुस्न अखलाक, पांचवी बड़ी नेमत. अल्लाह खुश, आपका अखलाक अच्छा है तो अल्लाह को आप भी अच्छे लगेंगे और बंदों में भी मकबूलियत है. अच्छे अखलाक वाले को कभी को बुरा नहीं कह सका. सोचिए हमारे पास लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे. कभी अपने आप को डेथ बेड पे लेकर सोचिए कि आपके मरने के बाद रोते हुए लोग जो आएंगे, कुछ तो मरवतन रोएंगे, कुछ अखलाकन रोएंगे. कितने हैं जो हकीकत में रोएंगे कि हमारा दुख सुख बांटने वाला दुनिया से चला गया. जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है 1975, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अखलाक में बेहतर हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहया और बदजुबान नहीं थे.